हरे कृष्ण, आपका सवाल है कि 24 में जो आपने परा और अपरा शक्ति के विषय में बताया है, उसके विषय में थोड़ा डिटेल से बताइए कि अपरा शक्ति क्या है और परा शक्ति क्या है, और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। इसके आंसर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 5 को देखिए। देखिए, ये मैं पेपर इसलिए बोलती हूँ कि इसमें आपको इसलिए देखना है क्योंकि रिप्लाई वही परफेक्ट होता है जो कि ऑथेंटिक हो, शास्त्र के मुताबिक हो। मैं तो आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये रीड किया है, लेकिन बताने का मतलब क्या है, मैं आपको अभी बता दूं और कल आपको, आपसे जब कोई पूछे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रिया दीदी ने पता नहीं कहाँ से बताया था, ये बता दिया था। शास्त्र का प्रमाण, श्लोक नंबर, ये लाइन नंबर, ये बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि ये ऑथेंटिक है और शास्त्र में कहा गया है। तो प्लीज आपकी भगवद गीता का पेज नंबर 393, ठीक है, उसमें श्लोक नंबर 5 है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतं महाभाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपरियम मितस्त्वन्यम, तो अपरा का मतलब होता है निकृष्ट, यानी कि गौण, नीचे लो लेवल की जड़, और यम मतलब यह, इसके अतिरिक्त, अतः ये ना अपरियम इतस्तन्यन। ये तो मैंने अभी तक जो तुम्हें बताई वो अपर है, मुझे समझ में नहीं आता लोग है ना श्रीमद् भगवद गीता के एक अकेले श्लोक को कैसे डिफाइन करते होंगे, क्योंकि हर श्लोक का मैं देखती हूँ दूसरे श्लोक के साथ ऐसे लिखा हुआ ना, अब तक मैंने तुम्हें बताया वो अपरा था, तो डेफिनेटली पीछे वाले श्लोक की बात करेंगे, और पीछे वाला श्लोक बताते ही नहीं होंगे तो उसको क्लियर कैसे होता होगा। बहरहाल यहाँ पर क्या बताया भगवान ने, अपरियम इतस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में परा, अभी तक जो मैंने तुम्हें बताई वो क्या थी, अपरा थी। अब ये देखना पड़ेगा अब क्या बताया था, तो श्लोक नंबर 4 में बताया, भूमि रापो नलो वायु खमनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृति एवच, यानी कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, ये 8 प्रकार के भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। पहले अपरा शक्ति के विषय में ये पूरा बताया, ये क्या है, ये अपरा शक्ति है, गौण है, नीचे वाली है और जड़ है। इनके अंदर जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये अपने से कुछ नहीं कर सकती। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब आत्मा के अंडर में काम करती है। और देखो आगे भगवान कह रहे हैं, प्रकृति विधि में पराम। अब मैं आपको एक दूसरी विधि प्रकृति के विषय में बताने वाला हूँ, उसको समझो, वो पराम है। और वो कौन सी है, भगवान कहते हैं, जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जीव भूतम, उसमें खाली जीव भूत है, जितने जीव है ना वो है, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, येदम जिसके द्वारा, इदम, इदम का मतलब होता है ये पूरे संसार, धार्यते जगत, धार्यते मतलब प्रयुक्त किया जाता है, विदोहन किया जाता है संसार का, यानी कि वो जीव जब इस प्रकृति के अंदर डाला जाता है तो वो क्या करता है, भोक्ता बन जाता है संसार में, जो कुछ भी है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि, उससे मिलकर जो कुछ भी बनता है उसका भोक्ता हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। इसमें कहा गया, हे महाबाहु, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जो 8-4 में बता दिया ना, उसके अतिरिक्त ये सब क्या थी, अपराशक्ति थी। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जिसमें जीवों से युक्त है, यानी उसमें जीव आते हैं जो इस भौतिक अपरा शक्ति के साधनों का विदोहन करते हैं, यानी कि जो भी इस अपरा शक्ति में है, किस अपरा शक्ति में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो महतत्व के अंदर जो कुछ भी है, 8 यहाँ पर भगवान ने अपरा शक्तियां बताई हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, तो इसका इस्तेफादा करते हैं, उसको उससे फायदा उठाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। परा का मतलब होता है आला, हाइएस्ट शक्ति है। अपरा शक्ति तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी देखो कितना क्लियर कर रहे हैं कि अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, जैसे कि विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है, क्या वो अपरा है, नीचे वाली है, जो अलग अलग तत्व है, वे सब तत्व है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, अब दो रूप है भौतिक प्रकृति, ये जो संसार है ना उसके दोनों रूप, दो रूप है। कौन से? स्थूल क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सूक्ष्म है। ये सब क्या है? ये सब अपरा प्रकृति के ही प्रतिफल है। जीवों को अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, यानी जीव जो है वो क्या करता है, अपने अलग अलग कार्यों से जो भी ये अपरा शक्ति है उसको, उसमें से फायदा लेता है, उसको यूज करता है, उसका भोगता है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है ये जीव, क्योंकि उसको भोगता है, वो भगवान की पराशक्ति है। हाईएस्ट शक्ति भगवान की कौन सी है? ये आत्मा है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। अब ये अगर समझो, अब थोड़ी देर के लिए सोचे इसे कि संसार में सब कुछ हो लेकिन आत्मा ना हो, तो कुछ यूज नहीं हो रहा था। वृक्षों के अंदर, जीवों के अंदर आत्मा न हो तो सब कुछ भी कार्यशील नहीं होता। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती है जब तक इसमें पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता है। क्यों? तब तक जीव इसके अंदर नहीं है, तब तक वो शक्ति नहीं है इसके अंदर। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अब शक्ति क्या? भगवान की, भगवान की शक्तियां दो है, अपरा और परा। अब अपरा शक्ति स्वयं से कुछ नहीं है, वो जो पराशक्ति ना भगवान की, वो उसका नियंत्रण कर रही है, उसको उस कंट्रोल में रखे हुए है। अतः जीव सदैव भगवान के द्वारा नियंत्रण होते हैं, भगवान के द्वारा हमेशा जीव। अब देखो ये जीव भी शक्ति है और उसका शक्तिमान कौन है? भगवान है। अपराशक्ति पराशक्ति के द्वारा कंट्रोल में है और पराशक्ति परम पुरुष भगवान के द्वारा कंट्रोल में है। ऐसा इसमें बताया गया कि शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करते हैं, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रण है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं होते। यानी कि ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जीव और भगवान शक्तिमान और पर उनकी उसकी शक्ति दोनों बराबर है। और आगे इसी को अगर हम लोग थोड़ा नीचे आकर सेकंड लास्ट पैरा ना उसको देखो, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रक जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, पराशक्ति को और अपराशक्ति, क्योंकि दोनों उसकी शक्ति है। अब शक्ति को कौन कंट्रोल करता है? जो शक्तिमान, जिसकी शक्ति होती है, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। जितना भी संसार में जो कुछ भी है वो सब उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। जीव उनकी पराशक्ति है। समझ में आ रहा है ना? जीव क्या है? परा मतलब आला शक्ति। तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ? हाँ, ये लास्ट में जो कह रहा है ना आपके पास, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण इज ओनली कंट्रोलर इन ऑल द लिविंग एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय हिम। दीज लिविंग एंटिटीज आर हिज सुपीरियर एनर्जी बिकॉज द क्वालिटीज ऑफ देयर एक्सिस्टेंस इज वन एंड द सेम विद द सुप्रीम। यानी कि उसकी क्वालिटीज जो है ना वो सेम है, इसलिए इसको सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर कहा गया है ना, सुपीरियर एनर्जी, क्योंकि उनके गुण जो है वो परमेश्वर के समान है, किंतु शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। यानी कि क्वालिटीज है उसके अंदर लेकिन क्वांटिटी। अब देखो जीव और भगवान में एक ही फर्क है, पता है क्या? सिर्फ ये कि जीव अणु है और भगवान विभू है। विभू का मतलब है अनलिमिटेड और अणु का मतलब है जरा सा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी क्वालिटीज सेम है, फिर भी स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। अब बेचारा जीव जो है वो इस स्थूल और सूक्ष्म अपराशक्ति में जब आ जाता है, इस चीज को हमने कितना अच्छा पढ़ा ना, तो बोला जब इसके अंदर आ जाता है तो क्या होता है, उपभोग करता है उसको, उसको यूज करता है, तो अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है उसकी रियलिटी। वो ये भूल जाता है कि मैं तो पराशक्ति हूँ, ये तो अपराशक्ति, ये भूल जाता है। इस स्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, फिर उसको माया के कंट्रोल में आना पड़ता है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है, और जब माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होता है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य भी है मुक्त हो जाता है तो उससे वास्तविक स्थिति प्राप्त होता है। जब हर चीज से मुक्त हो जाता है भगवान, इस ये भी इसको भी तो देखो नास्तिक कहा गया ना कि तादात्म्य हो जाता है, उससे भी मुक्त हो जाए तो उसे वास्तविक स्थिति, उसे फिर पता चलता है वास्तविक स्थिति क्या है बताओ, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो अतः यह निष्कर्ष निकल सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। गीता क्या मानती है? अब जो गीता मानती है वही गीता जिसने गाया है वो भी मानता है, यानी भगवान भी क्या मानता है कि जीव जो है वो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, लेकिन ये सुपीरियर शक्ति है, पराशक्ति है। और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, अभी तो भौतिक कलमश में लगी हुई है, भौतिक आसक्ति है इसके अंदर, मन के अंदर गंदगी है क्योंकि माया ने इसको कंट्रोल किया होता है, लेकिन जब इससे आजाद हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती। बस इसकी याददाश्त एक दफा आ जाए कि मैं रियल में कौन हूँ, इस बात को बार 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 समझना है कि हम भगवान के दास हैं, हमारी रियल स्थिति ये है। इधर आ जाएंगे ना, देखो हमारे समस्त तकलीफों की वजह क्या है कि हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं, ये बात निकलती नहीं माइंड से, शरीर से डिपेंडेंट हर चीज हम लोगों को असर करती है। जब से इधर से निकल गए ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी रियल स्थिति में आ जाए। आशा समझ में आ गया होगा। हरि बोल।